आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 83। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो नमो सिद्धानं नमो आययानं नमो वर्जायानं नमो लोये सर्वसाहूनं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीर्यम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं, और इस आत्मानुशासन प्रवचन दूसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 98 पर हम आ गए। 111 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था, अब एकदम नीचे का जो दूसरा पैराग्राफ आप वहां से हम देखते हैं। यहाँ लिखता है तप की मनुष्य भाव में ही संभव था। ऊपर के पैराग्राफ से पढ़ेंगे, 111 की पहला पैराग्राफ वहां से पढ़ेंगे। तप के लिए मनुष्य भव की विशेषता, यह मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है किंतु अपवित्र है, सुख रहित है, जिसमें मरण का समय नहीं जाना जा सकता है, ऐसा अविदित मरण समय है। हमने देखा ये कर्म भूमि में तो जो आयु बांध के आया है जरूर नहीं कि उतने भी होंगे, यहाँ उत्कृष्ट भी आयु हो तो भी अल्प है, तो भी अल्प है क्योंकि अन्य जो सागरों की पल्लियों की आयु की उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। ऐसी तो इस मनुष्य भव की स्थिति है, और यहाँ बात यह है कि तप मनुष्य पर्याय में ही होता है, मुक्ति तप से ही मिलती है, तब मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हे कल्याणार्थी पुरुष तुझको तप ही करना युक्त है। देखो पहले तो ये बात बता चुके हैं बहुत बार कि अपने आत्मा का अनुभव कैसे करना या वही जरूरी है, मात्र तप का बाल तप का तो निषेध भी हो चुका है, अब उसके आगे चलकर ये तप संबंधी बातें बता रहे। इसमें जो विशेषण दिया गया है वो बहुत मर्म बताने वाला है। देख यह मनुष्य जन्म का मिलना अति दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म में बहुत उत्कृष्ट कार्य हो सकता है तो उसे कर लेना चाहिए। धर्म का उत्कृष्ट पालन इस मनुष्य भव में ही हो सकता है, तप के मनुष्य भव में ही संभवता। मनुष्य के सिवाय तीन गतियां और है, नारक तिर्यंच और देव, इन तीनों की हालत सुनिए। देव तो विषयों में आसक्त है, उनको धर्म पालन की चित्त में बात नहीं आती, और फिर उनके शरीर की बनावट, शरीर का ढंग और कर्मों का उदय इस प्रकार का है कि उस देव शरीर में रहकर धर्म की बात मन में, संयम की बात मन में नहीं आती है और न उसे कर सकते हैं। यानी समय दर्शन तो चारों गतियों में कर सकता है जीव, पुण्य संयम की बात कर रहे। देव गति तो यौन थी, नारकी जीव तीव्र दुख से व्याकुल रहा पड़ते हैं, वे स्वयं संताप से तपे रहते हैं, धर्म का पालन वे क्या करेंगे। तिर्यंच जीव विवेक रहित है, सो प्रत्यक्ष दिखता भी है। एक मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें धर्म की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर तपस्या के लिए अपनी उत्सुकता रहनी चाहिए और शक्ति मापित तप करना चाहिए। निन्यानवे पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। आप ऐसा करना, दोनों कुर्सी वाले साथ में बैठकर देखना और एक पुस्तक इनमें देना।
आप आइए,
वो पुस्तक उनको दे दीजिए। अभी हमने पढ़ा ना, मनुष्य भाव में तप की संभवता है, देव तो विषया सकते है, नारकी के दुख से उसमें ही उससे उनको तो उससे पीड़ित है, यानी उससे निपटते नहीं, एक दूसरे के साथ यही द्वेष बुद्धि रहती है, इसलिए कहते हैं ऐसा मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर तपस्या के लिए अपनी उत्सुकता रहनी चाहिए और शक्ति मापिक तप करना चाहिए। ये करना चाहिए वाली हो तो उपदेश की भाषा, देह की अपवित्रता का वैराग्य में सहयोग। यह मनुष्य देह अपवित्र है, पहले देह संबंधी बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की थी। यह देह नीचे से ऊपर तक अपवित्र है, मल मूत्र मांस मज्जा हड्डी पीठ नाक खून खतान से रचा हुआ है, ऊपर पतली चाम की चादर मरी है, निस्किन चाम यानी चर्म। अरे शरीर जब अपवित्र ही अपवित्र है तो इससे क्या प्रीति करना। देवगति के जीवन में जो रूप होता है उसके समक्ष यहाँ के रूप में सुंदरता नहीं है। सुंदर हो शरीर, पवित्र हो शरीर, तो थोड़ी तृष्णा भी कर लो कि तपस्या करके इस शरीर को क्यों सुखाए, क्यों बिगाड़े। पर न तो यह शरीर पवित्र है और न यह सुंदर है। तब ऐसे अपवित्र शरीर को पाकर तप में लगाने का भय क्यों करते हैं? आराम से रहेगा तो भी यह शरीर अवस्था पाकर बूढ़ा बनकर नष्ट होगा, यानी तो कहा कितने खाना नहीं है। इस अपवित्र शरीर को तप की साधना में लगाए जाए तो उससे लाभ ही मिलेगा। मनुष्य भव की अपसुखता का वैराग्य में सहयोग। अपसुख यानी सुख नहीं है, दुख है, इसको अपनी अपगत ऐसा कहते हैं। यह मनुष्य शरीर सुख से रहित है। यह देह यदि सुख से भरपूर होता तो भी थोड़ी यह कहने की गुंजाइश रखते कि ऐसे सुख वाले शरीर को तप करके क्यों बिगाड़े, क्यों इसको हैरानी में डाले। किंतु सुख है कहाँ? बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में तो कल्पनाओं के अनुसार इन सब जीवों को दुख लगा हुआ है। बार बार ये तो कहते कि इन्हें अपने कल्पनाओं से ही सारे दुख खड़े हो गए, क्योंकि मैं तो एक द्रव्य हूँ, बाकी भी द्रव्य है, सबसे मैं जुदा हूँ, मैं तो चैतन्य द्रव्य हूँ, परंतु इसने सबके साथ कुछ न कुछ, ये मेरा है, ये मेरे अपने हैं, ऐसा उसके उसके साथ लगा रहे कल्पना करके, और उस किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट मानकर उसमें स्वयं दुखी हो रहा। तो अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार सब जीवन को दुख लगा हुआ है। देवों की तरह यहाँ सुख होता तो यह कहना ठीक था कि ऐसे सुख को छोड़कर क्यों कठिन तप करना, क्यों कष्ट सहना। पहले तो ये भी नक्की कर चुके हम कि देवगति में भी सुख नहीं है। अभी यहाँ अन्य एंगल से उनको बताना है कि शरीर के देह छोड़ दो, क्योंकि ऐसा सुंदर भी नहीं है, तो तप करने में तुम्हारा क्या जा रहा है। तन का भी दुख है, वचन का भी दुख है, मन का भी दुख है। इस मनुष्य शरीर में कितने ही रोग होते हैं, लाखों किस्म के रोग होते हैं, उन रोगों से भरा यह शरीर है। शरीरम व्याधि मंदिरम यानी व्याधियों का घर है। आगे लिखा है शरीर रोगों का घर है। शरीर की तो यह हालत है, मन की हालत भी बड़ी कठिन है इस मनुष्य को में। कुछ सुविधा भी होती, कुछ रोग रहित शरीर भी होता तो भी मानसिक सुखों से वह छूट न पाता। दुख पड़ा हो तो मानसिक दुख भोगता है, सुख में पड़ा हो तो मानसिक दुख भोगता है। मनुष्य भाव की अपसुखता एक छोटा
कुछ रोग रहित शरीर भी होता तो भी मानसिक सुखों से वो छूट नहीं पाते या दुखों से वो छूट नहीं पाते।
कुछ सुविधा भी होती, कुछ रोग रहित शरीर भी होता, यदि मानसिक सुख होता तो भी ठीक है। यानी रोग सहित अवस्था में भी मानसिक सुख होता तो चला लेते हैं। मानसिक सुखों से वो छूट न पाता, यानी शरीर छूट न पाता, यानी शरीर से फिर भी स्नेह बना देते। यानी बाहर से दुखी है तो भी मानसिक दुख है, और बाहर से सुखी है संयोगों में तो भी मानसिक दुख पड़ा है, ये कहना है।
नहीं,
मानसिक सुखों से वह छूट नहीं। यदि शरीर रोगी है पर मानसिक सुख है तो भी चला देता है उसे, वो शरीर से माया नहीं छूटती उससे। पर यह मानसिक दुख ही दुख है, बाह्य सुख हो या दुख हो मानसिक को दुखों से भरा है, ये कहना। मनुष्य भोग के अपो सुखता सुख में पड़ा हो तो मानसिक दुख देखता है, यानी दुख में है तो भी मानसिक दुख, सुख में है तो भी मानसिक दुख। नीचे का पड़ेगा, एक छोटा भी बच्चा हो 2-3 साल का, माँ के पास बैठा हो, उसके मन में यह आ जाए हमें सड़क पर जाना है, तो माँ उसे बहुत सुख से रखे, गोद में रखे, कुछ खिलाए और आराम से थपथपाए तो भी उसे मानसिक दुख लगेगा। न कुछ इतनी सी बात कि मुझे तो सड़क पर जाना है और यह जाने नहीं देती, वो बच्चा भी दुख में आकर तड़पता है, रोता है, सब प्रत्यक्ष दिखता है। बूढ़ा के मानसिक दुख देख लो, देख ले। बूढ़ों को कोई खाने पीने का भी दुख नहीं देता, समय पर खूब खिलाया, थोड़ी शरीर की सेवा भी कर दिया तो भी उनके मन में अनेक बातें आती, उनकी परिणति मन के अनुकूल नहीं होती या मन के अनुकूल नहीं चलते तो वे भी मानसिक दुख से कपकपाने लगते। जवानों की बात तो विचित्र है, उनका मन तो अति चंचल है, शरीर में बल भी है, सवे वह चाहते हैं कि मैं जिस काम को मन में विचारूं वह काम तुरंत हो, ठीक हो, लेकिन परपदार्थ का परिणमन अपने आधीन है नहीं, सो पर तो पर ही है, उसके परिणमन पर हम आपका अधिकार क्या है, जैसे दूसरे भले वो दूसरे जीव हो या अन्य परपदार्थ हो, इस पर तो अपना तो कुछ नहीं चलता, वो अपने परिणमन के अनुसार उनका परिणमन हो जाता है। हाँ, 100 नंबर का पृष्ठ ऊपर से 5 लाइनें आए हैं। यूं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी मनुष्य मानसिक दुख से दुखी है। इस शरीर में सुख नहीं है, सो ऐसे दुखों वाले आत्मा को तपस्या में लगा दीजिए, दुखी तो संभव है कि दुख न हो। कहो वहां अंतरंग में आत्मीय आनंद जगे तो यह मनुष्य भव सुख रहित है, इसे तपस्या में लगाना योग्य है। अविदित मृत्यु समयता का वैराग्य में सहयोग, यानी ये कहते कि मरण का समय कब आया ये कुछ कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है कब आने वाला है। ऐसा नहीं कि अभी बूढ़े हो गए तो हम मरने वाले हैं, अरे किसी भी समय किसी भी यानी अवस्था में कहो या आयु में मरण तो आ सकता है, वो तो बांध के आए पहले भाव में, अधिक बांधा हो तो भी कदली घास से भी मर तो सकते ही है। तीसरा विशेषण दिया है, इसके मरण का समय नहीं जाना जाता है, न जाने कब मृत्यु हो जाए, जैसे देवताओं का मरण का समय निश्चित है, उन्हें भी विदित है कि हम अमुक दिन मरेंगे, क्योंकि देवताओं की आयु बीच में कटती नहीं है, जिसको हम कदली खाते हैं वैसे वहां नहीं हो जाता, ना देवों में होता ना नारकियों में ना भोग भूमि में होता, तो कर्म भूमि के मनुष्य तीनों चम ही हो सकते। जैसे यहाँ शस्त्र से, रोग से या किसी कारण से अकाल मृत्यु हो जाती है, उसी को अकाल मृत्यु कहते हैं। ऐसी बात देवताओं में नहीं है, वे अवधिज्ञानी होते हैं, वे जान जाएंगे कि अमुक दिन अमुक मिनट पर हमें मरना है। तो जहाँ मरण का समय विदित हो वहाँ यह भावना बन सकती है, अभी तो इस दिन तक जीना है, पीछे कर लिया जाएगा धर्म, अभी तो इतने वर्ष पड़े हैं। लेकिन मनुष्य का तो कल का भी पता नहीं है कि क्या होगा, ऐसे अंदाज से अपनी वासना के अनुसार अपने चित्त में यह बताए हुए है हमें बहुत जीना है। अरे समझता मैं तो अमर हूँ, बेचारा वो तो मर गया, तो हम क्या करें, हम तो कायम जीने वाले, ऐसे सोचकर वो दूसरों के मरण को भी ऐसा ही देखता है। अरे वो बेचारा तो अकाल मरण में मर गया, पर हम तो जीने वाले हैं पूरा का पूरा। यह कहते हैं ना अपने चित्त में यह बसाए हुए कि हमें तो बहुत जीना है, लेकिन जब भी कोई मरता है उसके दो चार दस दिन पहले भी क्या कोई सोच पाता है अब हम निकट समय ही मरने वाले हैं, अतः में धर्म साधना के लिए तपस्या आदि का शीघ्र काम कर लेना चाहिए। देखो जिस गाथा में जिसकी मुख्यता से वहाँ उसी का उपदेश है, पहले तो अपना अनुभव की बात है तब उसकी बात की, अब यहाँ तो तप की बात है, तो इसलिए भी मनुष्य भोग की दुर्लभता बताकर भी तप के लिए प्रवृत्त कर रहा है। नर भोग की अल्पायुष्कता, यह मनुष्य भव अत्यंत अल्प आयु वाला भव है, देवताओं की आयु सागरों पर्यंत की होती है। जैसे मान लो किसी की 25 सालों की आयु है तो उसका अर्थ यह है वह असंख्यात वर्ष जीवित रहेगा, करोड़ नहीं, शंख महाशंख नहीं, किंतु असंख्यात वर्ष तक इस शरीर में रहेगा। कल्पना करो कोई 2000 कोश का लंबा चौड़ा गड्ढा है, 2000 कोश क्यों कहें, क्योंकि एक योजन है ना और ये महायोजन वाला लिया इसलिए 2000 कोश लिए, क्योंकि एक साधारण कोश के चार साधारण योजन के चार कोष होते हैं और ये महायोजन है तो 500 से गुना करना इसलिए 2000 कोष दे दिया। उसमें उत्तम भोग भूमि में पैदा हुए 7 दिन के मेढ़े के बच्चे के रोम के अत्यंत छोटे टुकड़े जिनका की कतरनी के काटन से दूसरा हिस्सा न हो सके, कैंची से हम उसको काटेंगे तो उसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, ऐसे रोम उस गड्ढे में भर दीजिए और उसके ऊपर हाथी फिरा दीजिए तो उसमें कितने रोम भरे हैं कल्पना लाओ, और उनको एक एक करके 100-100 वर्ष बाद निकालते जाओ, जितने वर्षों में सब लोग रोम निकल सके उतने वर्षों का नाम है व्यवहार पल्य। तो हमने बहुत बार सीखा है उससे असंख्यात गुणा है उद्धार पल्य, 1 करोड़ अद्धा पल्य में 1 करोड़ अद्धा पल्य का गुणा करके जो मेरा हुआ गुणा करके हम कोड़ा कोड़ी कहते हैं, जो आया उसे कहते हैं 1 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का होता है 1 सागर। एक्चुअली उसमें उन्होंने उद्धार पल्य लिखा है परंतु उससे असंख्यात गुणा अद्धा पल्य, ये बीच में एक वाक्य रह गया, यानी कि ना व्यवहार पल्य बताया उन्होंने उससे असंख्यात गुणा है उद्धार पल्य, और यहाँ ये होना चाहिए उससे असंख्यात गुणा है अद्धा पल्य। शायद वो छूट गया है प्रिंट में, और फिर अद्धा पल्ले का उन्होंने हिसाब बताया कि करोड़ अद्धा पल्ले गुना करोड़ अद्धा पल्ले, 1 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले कहीं, और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का 1 सागर होता है जिसको हम अद्धा सागर कहते हैं, जिसमें देवों की आयु वगैरह नापते हैं, ऐसे 33 सागर तक देव जीवित रह सकते हैं। ये तो उत्कृष्ट आयु कितनी हो सकती है देवों में वो बताया, नारकों की भी इतनी उत्कृष्ट आयु हो सकती है 7वें नरक में। समय तो है उसका माप कल्पना द्वारा बताया जा रहा है, कुछ करने की बात नहीं कह रहे हैं, उतना बड़ा गड्ढा उतने रोम भरे नहीं जा सकते और उनसे उन पर हाथी फिरा कर उन्हें एक एक करके सौ सौ वर्ष बाद निकाला नहीं जा सकता, तो इतना लंबा समय है यह समझ में आए कैसे? इसको समझाने के लिए कल्पना कर ऋषि संतों ने बताया है इस ढंग से लोग समझ जाओ। ऐसी ही उन देवों की आयु, ऐसी ही नारकियों की आयु होती है। उसके सामने मनुष्य के सौ वर्ष हो गए, लाख वर्ष हो गए, करोड़ वर्ष हो गए, तो ये कौन सी गिनते हैं? यह तो अल्प आयु। बहुत बड़ी लंबी आयु हो तो यह सोचा जाए कि चलने दो अभी मन मौजी का काम, जब बड़ा समय रह जाए तब देखा जाएगा। यह आयु बहुत थोड़े समय वाली है। ऐसी अल्प आयु में तप व्रत संयम साधना करके इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का लाभ उठा लेना चाहिए। कहते परमार्थ तपश्चरण से ही मुक्ति, परमार्थ शब्द लगाना। तपस्या के बिना मुक्ति नहीं होती। बाह्य तपश्चरणों में तीव्रता भले ही न हो, कोई साधु बाह्य तपश्चरण अधिक कर रहा हो, कोई बाह्य तपस्याएं कम कर रहा हो, पर अंतरंग जो तपश्चरण है, अभी यहाँ बात क्या है? शुद्ध निज ज्ञायक स्वरूप का आश्रय लेना, उसका ही अनुभव करना, वहां ही उपयोग रमाना, ऐसा जो पारमार्थिक अंतरंग तपश्चरण है और प्रायश्चित विनय आदि जो अंतरंग तपश्चरण है, ये सबको करने होते हैं। यहाँ से मुख्यतः शुरू अंतरंग निज ज्ञायक स्वभाव का आश्रय और उसी में स्थिर। भरत चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में मुंह के ऊपर रखा चाहिए, अंतर मुहूर्त केवल ज्ञान हो गया था। बाह्य तपश्चरण करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिल पाया था, पर उनकी जिंदगी में अंतरंग तपश्चरण वर्तता रहता था। राजपद संभालते हुए भी, चक्रवर्ती होकर भी धर्म का काम और अंतरंग में वैराग्य का काम बराबर चल रहा। मैंने गृहस्थ जीवन में भी चक्रवर्ती पद में भी वो अंतरंग की बात चल रही थी, उसको तपस्या नाम दिया यहाँ पर। परमार्थ तपश्चरण की अनिवार्यता। बाहुबली स्वामी एक वर्ष तक कायस्थ आसन में खड़े रहे। वर्षा काल में वेले बिपट गई, सर्पों के घर पास में ही बन गए, अनेक सर्प आस पास जुड़ने लगे। ऐसी एक वर्ष की कठिन साधना की, ऐसे दृष्टांत कम सुनने में आते हैं। बाहुबली के पिता ऋषभदेव ने दीक्षा लेकर उपवास की छह माह की प्रतिज्ञा ली थी। रोज रोज वे चर्या को निकलते रहे, पर छह महीने तक उन्हें विधि न मिली। देखो तो कर्मों की बात, इतने बड़े भगवान ऋषभदेव इस अवसर्पणी काल में, चतुर्थ काल में सर्वप्रथम रक्षक हुए हैं, जिनकी दया के कारण लोक में प्रसिद्धि हुई। कोई सृष्टि का रचने वाला है, छह माह तक रोज चर्या को जाए पर आहार का योग न मिले। उस समय के लोग, जबकि ऋषभदेव चर्या को निकले, राजा महाराजा सभी हाथी घोड़ा लेकर भेंट करने जाते थे। कोई कहे सोना चांदी रत्न ले लो, कोई कहे हाथी घोड़ा ले लो, कोई अपनी लड़की विवाह के लिए भेंट करने जाता था, जैसा कि उस समय रिवाज था। सब कुछ देने के लिए सभी लोग जाते थे, पर आहार देने की विधि न जान पाते। इसी से उन्हें छह माह तक आहार की विधि न मिली, तो किसी की तपस्या का समय जाना जाता, किसी को नहीं जाना जाता, पर अंतरंग तपस्या बिना किसी को मुक्ति का लाभ नहीं होता। ये अंतरंग तपस्या ने अपने आप में आत्मा में लीनता है। निगोद से निकलने का सुयोग। हे कल्याणार्थी पुरुष, इस दुर्लभ नरदेह को पाकर इसे सदुपयोग में लगा। यह मानुष देह पाना बड़ी दुर्लभ वस्तु। ये तो देखा ना कि इतने अनंत काल तो इसने निगोद में और एकेंद्रिय में बिताया है, और द्विंद्रिय पर्याय मिलना भी कितनी दुर्लभ बात है। अब ये तो अभी सबको लान कर भी मनुष्य तक आ चुका है। प्रथम तो तुझे निगोद से निकलना ही बड़ा दुर्लभ था, क्योंकि कितने जो अनादि से वहां पड़े अभी बाहर ही निकले, निकले नहीं है, जिसको हम नित्य निगोद कहते हैं। निगोद से मरकर निगोद, निगोद से मरकर निगोद, एक बार उसमें निकला तो उसको भी ये व्यवहार राशि में आ गया। फिर उसमें भी कितने ही बार पंचेंद्रियों को फिर निगोद में भी जाता है।
ये नित्य निगोद वहाँ से बाहर निकल के व्यवहार राशि में आएगा, उसको इतर निगोद निगोद कहेंगे या नित्य निगोद ही कहेंगे?
नित्य निगोद से बाहर आया, यानी उसके निगोद पर्याय छूटी, अभी नित्य वाली छूट गई। बाहर यानी वो पृथ्वी का एक हुआ या अग्नि का एक हुआ या मनुष्य हुआ या जो तीर हुआ जो कुछ हुआ, क्योंकि निगोद से तो वो देवनार्क तो नहीं होगा। अब उस पर्याय का एक भव करके भी अगर वो निगोद पर्याय में जाता है तो उसको निगोद इतर निगोद,
उसको इतर निगोद, वो निकल के साधारण वनस्पति में जाएगा तो
साधारण वनस्पति का अर्थ ही निगोद
है, नित्य निगोद की बात
है। वही तो साधारण वनस्पति को या निगोद को बात एक ही है।
नित्य निगोद से बाहर आके वनस्पति साधारण वनस्पति का में जाए तो इतर निगोद कहेंगे?
नहीं, साधारण वनस्पति का अर्थ ही निगोद है। नित्य नाम के कोई प्लेस नहीं है कि वो नित्य निगोद से निकला। नित्य निगोद ये पर्याय का नाम है, यानी उस निगोद पर्याय से वो कभी छूटा ही नहीं, बाहर ही नहीं आया।
अपने व्यवहार राशि में आया
व्यवहार राशि अन्य पर्याय में आया, व्यवहार राशि तब कहेंगे हम। निगोद नित्य निगोद पर्याय एक बार तो छूट गई कुछ, उसमें से आकर फिर वो इतर में जाएगा तो इतर निगोद भी व्यवहार राशि में आ गया। पर नित्य में से इतर में कैसा जाएगा? बीच में कोई पर्याय पाएगी तब उसको इतर नाम मिलेगा,
फिर वो नित्य निगोद में नहीं जाएगा, नित्य निगोद से बाहर निकल
गया। फिर से सुना, नित्य कब कहेंगे? जो अनादि से निगोद पर्याय के सिवाय अन्य पर्याय जिसको नहीं मिली उसको नित्य निगोद
करेंगे।
पता है ना, अभी अभी एक बार मान लेते पृथ्वी का एक हुआ और फिर निगोद में गया तो अभी उसको नित्य कैसे कहेंगे, क्योंकि उसके अनादि की पर्याय छूट गई ना निगोद की। समझ में आई बात को? अभी यहाँ देखते हैं 102 पेज पर आ गए। अनंत निगोदिया जीव, अनंत क्योंकि एक एक शरीर में अनंत पड़े, अनादि काल से अब तक निगोद में पड़े, इसको कहेंगे नित्य। अनादि से अब तक निगोद में, उसमें से अन्य पर्याय पाए नहीं उसको भी नित्य निगोद नाम नहीं देंगे। अब अन्य पर्याय से फिर दोबारा निगोद में जाएंगे तो उसको चतुर्गति निगोद या इतर निगोद कहेंगे। तो जैसे अनादि काल से अब तक निगोद में पड़े और अनंत काल तक निगोदिया रहेंगे, यानी वो उसमें से नहीं आए, क्योंकि हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद में से व्यवहार राशि में जन्म लेते हैं। कुछ ऐसे भी निगोदिया जीव हैं जो इस निगोद पर्याय को कभी छोड़ नहीं सकते, यही वो जो नित्य हमेशा रहेगी ना, क्योंकि ऐसा कभी काल नहीं आने वाला कि अभी सारा निगोद नित्य निगोद रहित हो गया और सारे व्यवहार, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो हमेशा निगोद पर्याय में ही रहेंगे अनादि अनंत काल तक। निगोद में महाकष्ट है, श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है, केवल एक स्पर्शन इंद्रिय है, शरीर भी ऐसा साधारभूत है, कि एक जीव मरे तो अनंत जीव संग में मरे, एक जीव जन्मे तो अनंत जीव जन्म ले। मैंने ऐसे जो समान आयु वाले एक साथ जन्मते हैं कि जो समान आयु पूरी करके एक साथ मरेंगे, एक साथ जन्मने वाले एक साथ मरते ही है, ये नियम है वहाँ। फिर दूसरे समय में दूसरी बैच आएगी, तीसरे समय में तीसरी बैच आएगी, जो बैच जिस समय आई वो अपनी अपनी आयु पूरी करके एक साथ मरेंगे, और वो शरीर बना रहता है
इसे नित्य निगोद
किसी भी निगोद। ऐसे निगोद के कठिन दुखों से तो हम आप निकल आए हैं। अब इसी भाव में अनेक चिंताएं अनेक शोक किया करते हैं। प्रत्येक स्थावरों में जन्म निगोद यानी साधारण एक इंद्रिय यानी वनस्पति का एक है। प्रत्येक स्थावर यानी जो प्रत्येक शरीर है उसकी बात है। निगोद से निकला तो ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति में उत्पन्न हुआ। निगोद भी वनस्पति थी पर वो साधारण वनस्पति थी या वनस्पति यानी वो तो प्रत्येक वनस्पति जिसको कहेंगे। इनकी भी दशा कोई सुखमय दशा नहीं है। पृथ्वी को चाहे जो काटे भेदे उसके पास रक्षा का क्या साधन है। ऐसे ही जल को चाहे जो बिलोए अग्नि को चाहे जो बुझाए वायु को चाहे जो रबड़ आदि में रोक दे। रबड़ आदि में रोक भी समझते हैं तो बलून करते ना टायर है बलून है और अन्य भी चीजें हवा भर देते किसी में। और वनस्पति को चाहे जो तोड़े भेदे फूल पत्तियों को तोड़कर चाहे जो अपना दिल बहलाए। कोई तो प्रभु पर फूल चढ़ाकर लोग कहते हैं हमने धर्म किया पर धर्म वहाँ कहाँ होता है। हालांकि गृहस्थावस्था में ये सभी कार्य किए जाते हैं पर इनके छेदने में भेदने में जो प्राणाघात होता है वह तो होता ही है। स्थावरों से निर्गमन स्थावर नहीं है सारे एक इंद्रिय। इन स्थावरों से निकलकर दो इंद्रिय जी हुए लट केचुआ केचुआ ने वो तो गांडूल गुजराती में क्या कहते हैं अर्थवर्म।
हाँ
दोनों ओर चलता है ना जोक जोक समझते लीच जो ये लगाते हैं ना खून चूसने को जोक है ना वो जलवा शंख कौड़ी है सीप आदि की पर्याय में आए उनका भी कितना घात होता है। थोड़ा एक इंद्रिय से इनमें अधिक विकास है। अनेक प्रकार के कष्ट इस जीव ने दो इंद्रिय पर्याय पाकर भोगे। ये सब लट जो है ना लट वियर वो सब इसी में आते हैं। दो इंद्रिय से निकल कर यह जीव तीन इंद्रिय पर्याय में आया कीड़ा कीड़ी बन गया यह भी कोई खास विकास नहीं है। चार इंद्रिय हो गया तो मक्खी मच्छर आदि की पर्याय मिली उनकी भी स्थिति हम आप सभी देख ही रहे हैं। पंचेंद्रिय में पशु पक्षी हो गए उनकी भी सभी लोग हालत देख रहे हैं। वर्तमान उपलब्ध सुयोग के सदुपयोग का अनुरोध इन सबसे निकलकर मनुष्य पर्याय में आना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। मनुष्य हो गए पर उत्तम देश का मिलना कितना कठिन बात है कितनी कठिन बात है। पैदा हो गए होते हैं कहीं बर्फीले प्रदेश में जहाँ अन्न और फल नहीं पैदा होते तो कितनी दयनीय स्थिति होती। उत्तम देश भी मिल गया तो उत्तम कुल का मिलना मुश्किल है। देश भी उत्तम मिल जाए और नीच कुल मिल जाए तो वहाँ भी भावों की उन्नति नहीं है। उत्तम कुल मिल जाए फिर शरीर का निरोग मिलना बुद्धि का विकास होना प्रतिभा संपन्न होना धर्म विद्या का सुयोग मिलना उसमें रुचि रखना धर्म की बात सुनना समझना चित्त में धारण कर लेना उनका पालन कर सकना ये सारी बातें उत्तरोत्तर कठिन है। ये यहाँ तक आया हुआ फिर इसमें अगर ढिलाई करता है इतनी दुर्लभ चीज हम आपको आज मिली है इसे पाकर इसे अन्य गतियों की भांति विषय कषाय में ही गंवा दिया तो सोच लीजिए ऐसा समागम मिलना आसान नहीं है। यानी ये उसको प्राप्त जो पर्याय है और उसकी जो सारी जो उसके अनुकूलता है केवल लौकिक अनुकूलता की बात नहीं है उत्तम कुल है उत्तम आचार और ये सब जिनवाने को सुनने को मिलना वो समझ में आने जितनी बुद्धि है याद भी रहती है इतनी तो याददाश्त शक्ति भी है फिर भी कहते विषय कषाय में गंवा देना दिया तो सोच लीजिए ऐसा समागम मिलना आसान नहीं है। प्रणब जी साहब कहते ये अवसर पाना फिर दुर्लभ महादुर्लभ। आज दुर्लभ मानुष देह मिला है तो इसे तपोव्रत संयम में लगाएं, इससे ही मोक्ष का काम सिद्ध होगा। सबसे पहले में पहले उन्होंने बात बताई कि राग रहित अपने को ज्ञानमय चैतन्यमय अनुभव करना, उसी में स्थिर हो जाना। अभी हम 112 नंबर को पढ़ेंगे। पहले में आपने देखा है कि चेक किया है क्या? जरा कर लेते हैं फिर प्रॉब्लम ये साफ क्या करके उसको भी देखें। आराध्यो भगवान जगत त्रय गुरुर्वृत्ति सतां सम्मता क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्लेशस्तच्चरण स्मृति क्षतिरपि प्रक्षय कर्मणां साध्यं सिद्धि सुखं कियान् परिमितः कालो मनस्साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरं किं वा समाधौ विधाः। बरोबर शार्दूल। आराध्यो भगवान् जगत्त्रयगुरुर्वृत्ति सतां सम्मता क्लेशस्तच्चरणस्मृति क्षतिरपि प्रक्षय कर्मणां साध्यं सिद्धिसुखं कियान् परिमितः कालो मनस्साधनं सम्यक् चेतसि चिन्तयन्तु विदुरं किं वा समाधौ बुधाः। अर्थ देखते ढूंढारी भाषा में है, समझेंगे इसको। समाधि विषय, तीन जगत का गुरु भगवान सो तो आराधना और संतनी करी सराही ऐसी प्रवृत्ति करें। क्या कहते हैं समाधि में क्या करना है? तो तीन लोक के स्वामी उनकी आराधना करना और जो संतों के द्वारा सराही जाती जिसकी प्रशंसा की जाती है ऐसी प्रवृत्ति करना और तीस भगवान का चरण का स्मरण करना। इतना क्लेश बहुरी कर्मणि का प्रकर्षपने नाश होना यह खर्च और मोक्ष सुख साधने का फल। क्या कहते हैं क्लेश क्या क्या करना है? तो ये आराधना करना इतना तो क्लेश करो और कर्म का नाश होता है इतना तो आपका खर्च हो रहा है और मोक्ष सुख साधने का फल मिल रहा है और काल कितना एक परिमाण लिए थोड़ा और मन का साधन करना। हे ज्ञानी हो तुम नीके मन विषय विचार करो समाधि विषय कहा कष्ट है। समाधि में क्या 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 खर्च कर रहे हैं? तो कर्म जा रहा है इतना खर्च है, क्या फल मिल रहा है? तो मोक्ष सुख मिल रहा है तो तुम वहाँ कष्ट क्या है? समाधि में समाधि ने अंतरों में स्थिरता लीनता इसी का भावार्थ। को जानेगा तप विषय कष्ट है कष्ट सहा जाता नहीं। यानी कोई ऐसा कहता है कि तप करने में तो कष्ट होता है और हमसे तो कष्ट सहन नहीं होते है। ताको कही उसको कहते हैं सर्व तपन विषय उत्कृष्ट तप ध्यान है। इस ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट तप है। किसी विषय कहाँ कष्ट है सो तू कही तो उसमें कष्ट कहाँ है बताओ? तो इसे प्रश्न उसी को पूछते हैं। प्रथम तो नीचे का सेवन करते ही लज्जादिक का खेद हो है सो तो ध्यान विषय। नीचे का सेवन करते हैं मान लेते आप ऑफिसर हो और कोई आपको सिपाही के पास या चपरासी के पास उसका कोई आपको बहुमान करना है अभी नहीं करनी है तो दुख हो जाता। यहाँ क्या करना है? यहाँ फिर से प्रथम तो नीचे का सेवन करते ही लज्जादिक का खेद हो है। यानी आप उच्च पद पर हो और नीच पद वाले को अगर आपको सेवन करना है नहीं उसके बहुमान करना है तो शर्म हो जाएगी। सो तो ध्यान विषय तीन लोक का नाथ अरहंतादिक व तीन लोक का ज्ञायक आत्मा ताका आराधन करना। मैं स्वयं तीन लोक का ज्ञायक हूँ उसके आराधना करना है या तो तीन लोक के स्वामी अरहंत भगवान है उनकी आराधना करना है? बहुरी जो आपको नीच कार्य करना पड़े तो खेद होई। यहाँ कितने कहते कि कार्य अगर कोई बहुत खोटा कार्य करना पड़े तो फिर आपको दुख हो सकता है। तो कहते जिस वृत्ति को, वृत्ति यानी जो आचरण कार्य, महंत पुरुष भी प्रशंसे, ऐसी वृत्ति अंगीकार करनी, यानी वृत्ति यानी आचरण करने में भी कोई खोटा आचरण नहीं करना है, उत्तम आचरण है ये भी। बहुरी आराधना विषय की चुक क्लेश हो तो खेद उपजे, सो सेवन इतना ही, भगवान आत्मा का चरण व आचरण ताका स्मरण करना, यानी आराधना करने में भी क्लेश हो सकते हैं, गाकर करनी है या कोई ऐसा उच्चर कूद करनी है या कुछ, तो यहाँ भी उसका भी सवाल नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा का चरण है, आत्मा में रमणता करनी है। बहुरी साधन करते किछु अपना जाता हो तो भी दुख हो, कुछ करने में अपना कुछ खर्च होता हो तो भी दुख होता है, पैसा जा रहा है इतना क्या करे, तो कहते सो जाका नाश क्या चाहिए, ऐसा कर्म ताही का नाश हो है, अपना किछु खर्च होता नहीं, यानी जिसको नाश करना है वो तो स्वयं में नष्ट हो रहा है, कर्म ही निकल जा रहे है, अपना तो कुछ नहीं जा रहा है। बहुरी जो साधन का तुच्छ फल हो तो किछु कार्यकारी नहीं, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसका अगर कोई बहुत अल्प सा फल मिले तो भी क्या फायदा, उसमें करने से क्या फायदा। तो यहाँ कहते सो ध्यान का फल सर्वोत्कृष्ट मोक्ष है, इसका फल भी सर्वोत्कृष्ट मिल रहा है, यानी ऐसा भी नहीं कि अल्प फल के लिए हम क्यों इतना कष्ट करें। बहुरी बहुत काल पर्यंत तो साधन करना हो तहाँ भी खेद उठ जाए, यानी बहुत लंबे काल तक अगर साधना करनी है तो फिर भी खेद हो जाएगा, यानी कष्ट हो जाएगा। सो थोड़े ही काल ध्यान किए ही फल पाई है, यानी ध्यान तो थोड़े ही अल्प ही काल तक होता है, उसका फल मिलता है। बहुरी जो साधन पराधीन हो तो भी खेद हो, यानी जो पराधीन है अभी क्या करे, किसी के अधीन है तो हमको मेहरबानी करे तो साधन हो सकता है, क्योंकि तो ऐसा भी नहीं है। सो अपने मन ही का साधन करना, अन्य विचार से छुड़ाए भगवंत विषय लगवाना, यानी अन्य विषयों से अपने मन को छोड़कर भगवंत ने अपने भगवान आत्मा के ऊपर लगाना है, वहां पर भी बिल्कुल स्वाधीन है, कोई पराधीनता नहीं है। सो ऐसा ध्यान रूप तप जिस विषय खेद कहा, यानी ऐसे जो ध्यान रूप तप में खेद है ही नहीं है, कहा है ऐसा पूछते है। सो तू ही विचारी, तू ही विचार कर, तप करने विषय अनादर मत करे, यानी ऐसा जो तप है अंतरंग में स्थिरता वाला उसमें बिल्कुल अनादर मत करना। को कहेगा ध्यान विषय तो कष्ट ना ही, परंतु अनशनादि तप विषय कष्ट है। ताका उत्तर, अनशनादि तप विषय कष्ट तब होगी जब आप न किया चाहे थे, नहीं समझे, अब नहीं करना चाहते तब आपको कष्ट लगता है उसमें। अब दुकान में कोई ग्राहक आता है, यहाँ लाखों की वो पहले आते हैं ना, साड़ी की दुकान हो और वो साड़ी के लिए वो तो क्या कहते हैं, बस्ता क्या कहते हैं, क्या कहते उसको, बस्ता ही कहते हैं ना, हाँ। तो लाख 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 दो लाख चार लाख की तो खरीदी करने वाले है, तब भूख कहाँ चली जाती है, तब उसका दुख नहीं होता, भूख क्या होती है पता ही नहीं है, अंदर से पूछते हैं चलो चलो खाने को, अब खा लो हमको भूख नहीं आज, ये कहते हैं। अनशनादि तप विषय कष्ट तब हुई जब आप न किया चाहे, सो यहाँ तो जैसे अपना परिणाम प्रमादि न हुई और क्लेश रूप भी न हुई, तैसे ध्यान की सिद्धि के अर्थ चाहे करिए अनशनादि करिए, यानी स्वयं सोच समझ कर अनशनादि करता है, क्योंकि उसमें अधिक उसमें बुद्धि लगती है, ताते ही तहाँ भी कष्ट न हो है। अरे इनकी बात छोड़ दो, स्कूल में अभ्यास करते थे, परीक्षा मुंह पर है तो देते रात में नींद आती है, इसलिए नहीं अभी शाम को भोजन नहीं करेंगे, उसको भी निकाल देते, आज नहीं करेंगे, आज चावल नहीं खाएंगे, आज भोजन नहीं करेंगे, क्यों नींद ज्यादा आती है, ऐसा ही प्रमाद नहीं आवे इसलिए स्वयं अनुशनारी करते। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रवचन, यानी तप करता नहीं तब कर, तब यानी हमें लगता है कि बाहर से सब कुछ छोड़ देना और ये अनुशन करना इतना ही तप है, तब तो अंतरंग में स्थिरता वही तप है, फिर उपचार से जो बाह्य में किए जाते हैं उसको भी तप कहेंगे। अब पेज नंबर 103 पर पढ़े, अल्प साधना और महान फल, तीन लोक के गुरु भगवान तो आराधना किए जाने योग्य है, अर्थात जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान की आराधना करने का काम है और सज्जन पुरुषों की जैसी प्रवृत्ति करने का काम है, यानी सज्जन पुरुषों के समान प्रवृत्ति जहाँ होती है वहाँ। अब भगवान के चरणों का स्मरण करने में अंदाज कर लो कितना क्लेश है, यानी क्लेश नहीं है ये भी, और लाभ कितना है। अरे इन सत्कार्यों से कर्मों का क्षय हो जाएगा, मुक्ति का सुख मिल जाएगा। आप सोच लो इतना काम करने के लिए हमें कितना समय मिला है इस मनुष्यों में, और एक मन को साधने भर का काम है। एक स्वाधीन सुगम कार्य करने में क्या कष्ट है? कष्ट तो विकार भावों में, अनादि से उसकी इतनी आदत है कि ये जो स्वाधीन है वो कठिन लगता है और विकार वो सरल लगते हैं। विषयों की इच्छा हो, काम की वेदना हो, रसी हुए स्वादिष्ट भोजन करने की वांछा हो, इत्र फूले सुगंधित पदार्थों का परिणाम बना हो, सुंदर सुंदर रूपों के अवलोकन की उत्सुकता हो, गायन राग सुनने का भाव हो, यश कीर्ति बढ़ाने का चित्त में चाव हो, तो ये सब क्लेश है। ये पांचों इंद्रियां मन को भी ले लिया, यश की चाह। समाधि भाव होना क्लेश नहीं है। सज्जनों जैसी वृत्ति बनाना, भगवान प्रभु की आराधना करना, यह क्लेश नहीं है। यह तो कष्ट के निवारण का उपाय है। हे भव्य पुरुषों, अपना चाव बताओ, चित्त बनाओ विमुक्ति और सत्संग सेवा का। इन दो बातों का चाव बनाओ और अपना जीवन इन दो प्रसंगों में बीते तो क्लेश न होगा, शांति ही मिलेगी। ध्यान तप की विशेषता। कोई पुरुष समझे कि तप में तो बड़ा कष्ट है और कष्ट सहा जाता नहीं, उसके प्रतिबोध के लिए यह छंद कहा गया है। प्रतिबोध ने उसको समझाने के कि देखो समस्त तपों में उत्कृष्ट तप ध्यान है। उपवास करना, काय क्लेश करना, इनको तो नहीं कहा जा रहा है, सब तपों में उत्कृष्ट तप ध्यान है। मन का अच्छी जगह स्थित होना यह सबसे ऊंचा तप है। एक मन को गिराने से गिरना हो जाता है और एक मन को संभाल लेने से उठना हो जाता है। अंतरंग में देखिए कितने क्लेश है, कितनी सी बात है। अरे प्रभु की भक्ति करो और सत्संग में निवास करो, सज्जनों जैसी चर्या बनाओ। इसमें कष्ट तो रंच है ही नहीं, लाभ अनेक है, शांति मिलेगी, निराकुल रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और भव भव के बंधे हुए कर्मों का विनाश होगा। प्रभु की भक्ति ने पहले निज भगवान आत्मा में स्थिरता। देखो समस्त तपों में उत्कृष्ट तप है ध्यान, इसमें क्या कष्ट है सो तो बताओ। दो ही कार्य तो बताए गए, प्रभु भक्ति और सज्जनों जैसी प्रवृत्ति। इनके खिलाफ काम क्या होगा? परिवार की भक्ति अर्थात परिजनों से मोह करना और नीचे कार्यों का, नीचे पुरुषों का सेवन करना, इनमें तो खेद ही होगा। कोई अयोग्य काम कर लिया, नीच काम कर लिया तो प्रथम तो लज्जा का खेद भोगना पड़ता है और फिर इतना ही नहीं, इसके बाद अपमान और तिरस्कार भी हो जाया करता है। जिन विषयों में विकारों में तुम रम रहा है क्लेश का कारण तो ये ही है। सो नीच का सेवन करने में खेद ही खेद है, यानी ये नीच कार्य है और इसमें तो खेद ही है। तीन लोक के नाथ अरहंत आदि का और तीन लोक के ज्ञायक परमात्मा का उत्का हुआ है। परमात्मा करो तो तुम लगाना, परमात्मा का आराधना करना, इसमें न क्लेश और न भविष्य का कोई संकट है। इस प्रकार सज्जनों की प्रवृत्ति बनाना, इन्हें सज्जनों जैसी, जो सज्जन लोग क्या करते हैं ऐसी वृत्ति से चलना इसमें खेद नहीं होता। एक सौ चार पुष्प पर आएंगे। तीसरी लाइन, प्रभु भक्ति और सद्वृत्ति में उत्कर्ष। आपको नीच कार्य करना पड़े तो उसमें खेद होता है। जिस वृत्ति की वृत्ति ने वो आचरण के अर्थ में लेना, या जो भाव उठता है ना शुभ अशुभ, उसको भी वृत्ति कहेंगे। जिस वृत्ति की बड़े पुरुष भी प्रशंसा करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति ही अंगीकार करने के योग्य है। अभी चार आदमियों में कोई बात कहेंगे तो भली भांति कहेंगे, चाहे वह स्वयं भला न हो, चाहे उसकी प्रवृत्ति भले की न हो, पर चार आदमियों में बात बोलनी होगी तो भली ही बोली जाएगी। तो जिस बात को चार आदमियों के बीच कहने में लज्जा आती है, उस नीच कार्य का सेवन कितना अनर्थ करने वाला होगा। देख, तेरे लिए दो ही काम बताए जा रहे हैं, भगवान की आराधना करना और सज्जनों जैसी प्रवृत्ति करना। इनके करने में कोई कष्ट यदि आता है, वह तो तेरे लिए श्रृंगार है, कष्ट नहीं है, यानी तेरे लिए अच्छी बात है, यानी तेरे लिए शोभादायक है। तो यदि सद्वृत्ति बनाए हुए है, प्रभु भक्ति बनाए हुए है, तो ये सारे संकट जो इस बीच आते हैं, वे श्रृंगार है, संकट नहीं है। और देख, प्रभु भक्ति और सज्जनों जैसी प्रवृत्ति को देखकर यदि नीच कार्यों में लगा, तो इससे तो अनंत क्लेश भोगने पड़ेंगे, नीच गति में जन्म लेगा, कोई पूछनहार न रहेगा। इससे उल्टा चलने पर तो अनंत क्लेश पाओगे। यदि एक सीधे मार्ग पर चलने में वर्तमान परिणामों के अनुसार कुछ कष्ट होता हो, तो वह कुछ कष्ट नहीं, यानी उसके कंपैरिजन में अगर अनिश्चय ने जो उल्टे मार्ग पर चलेगा तो नीच गतियों में जाकर इतना कष्ट भोगने वाला है, उसके सामने तो ये कष्ट है ही नहीं। प्रभु भक्ति और सद्वृत्ति का फल, भगवान आत्मा के आराधना करने में अथवा प्रभु के शुद्ध गुणों के स्मरण करने में, अपने आप के कल्याण की साधना में तेरा कुछ जाता है क्या? तेरे स्वरूप में से कुछ घटता है क्या? अगर कुछ घटता हो, जाता हो, तो उसमें दुखी होना चाहिए, उसमें दुखी होना ठीक ही है। सो जाता तो कुछ है ही नहीं, बल्कि क्लेश का कारण जो कर्म समूह है, उस कर्म समूह का ही नाश होता है। अपने निज स्वरूप में ही कुछ खर्च नहीं होता, किंतु जो बाधा विपदा लगी हुई है, बोझ चढ़ा हुआ है, वह बोझ नष्ट हो जाता है। और भी देख, भगवान की आराधना और सज्जनों जैसी प्रवृत्ति, इन दोनों का फल साधारण नहीं है, किंतु सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल है। यदि तुझे कुछ क्लेश जचता हो, प्रथम तो क्लेश है ही नहीं, सद विचारों में सद आचरणों में क्लेश नहीं होता, बल्कि प्रसन्नता ही होती है। किंतु मन चिरकाल से विषयों में लिप्त बना चला आ रहा है, इस कारण मन की वृत्ति कुछ गंदी है, इसी से इसे अनगिनते क्लेश होते हैं। खैर, सद्वृत्ति से रहे तो इसमें कोई साधारण सा क्लेश है, किंतु फल कितना शिवमय होता है, शिवमय कल्याण मोक्ष। असद्वृत्ति में पराधीनता, यानी वो जो सद्वृत्ति है प्रभु भक्ति तो स्वाधीन है, अब इसमें पराधीनता बोल रहे हैं असद्वृत्ति में। भैया, कोई साधन पराधीन हो तो उसमें खेद होना ठीक है, पराधीन साधन में खेद होता है। लेकिन तू देख तो सही, तू पराधीन शब्दों का भी अर्थ नहीं लगा सकता। अरे, विषय के साधनों में आधीन होने का नाम पराधीन है, लोग में उसको पराधीन कहने लगते हैं कि जो छोटा पुरुष है, किसी बड़े के अंडर में काम करता हो तो लोग कहते हैं कि यह पराधीन है, पर यह कोई खास पराधीन नहीं है। पराधीनता तो विषय के साधनों की हुआ करती है। मोही जीव जिसको स्वाधीन समझते हैं, वो बहुत पराधीन है। परिजन से प्रेम है, मोह है, उन परिजनों की कितनी ही बातें सहन करनी होती है, और फिर भी विषयों के लोभ के पीछे विषय साधनों के कारण वहाँ पराधीनता का अनुभव नहीं करते। किंतु जहाँ धर्म का कार्य हो, सत्संग की बात हो, प्रभु भक्ति सद्वृत्ति की बात हो, वहाँ पराधीन मान लेते हैं। पराधीन है ही नहीं है, उसने मान लिया है। पराधीन तो इंद्रिय के विषयों के साधन के अधीन बनने का नाम है। यह कार्य तो स्वाधीन है, अरे अपने मन की ही तो साधना करना है, प्रभु भक्ति की स्वाधीनता। देखो जो सज्जन पुरुष है वह भी वीतराग है, और जो भगवान है वह तो उत्कृष्ट वीतराग है ही। अपने मन से इस वीतराग प्रभु और गुरुओं के प्रति अपनी भक्ति भाव रहे, उनकी सेवा उपासना बनी रहे, तो देखो सेवा उपासना करने पर भी उनकी ओर से तुझे कोई बाधा नहीं आती, और तू उन वीतराग पुरुषों की प्रभु की सेवा उपासना न करे तो भी उनकी ओर से तुझे कोई बाधा नहीं आती। ये सेवा करने से खुश होकर कुछ देने वाले नहीं, और नहीं करने से कुछ बाधा डालने वाले नहीं। अब तो केवल तेरी ओर से ही करने का काम है, मन का साधन बना और प्रभु एवं गुरुओं की सेवा में रत रहे, कितना स्वाधीन काम है। एक तो अपने मन को डांटने भर की बात है, कष्ट की बात, पुरुषार्थ की बात तो इतनी मात्र है, और लाभ कितना है। निराकुलता रहे, शांति रहे, स्वाधीनता रहे, भोग के कर्मों के बंधन भी कटे, कितने लाभ है। फिर भी यह मोही जीव प्रभु भक्ति और सद्वृत्ति को नहीं करना चाहता। हे कल्याणार्थी पुरुष, तू विचार तो एक प्रभु के ध्यान में कौन सा कष्ट है, इस तप में तो अनादर मत कर। वो बाह्य गाकर वो भक्ति की बात नहीं, ये ध्यान रूप भक्ति की बात है। जैसे कहते ना, भगवान के गुणों में लीन हो जाकर उसके गुणों का ध्यान करने, जैसे उनका स्वरूप है इतना अपना भी स्वरूप है, इसलिए ध्यान में भगवान का ध्यान करो या अपना ध्यान करो, एक ही बात कहते। तपश्चरम की स्वाधीनता, शायद यहाँ कहोगी कि सज्जनों जैसी वृत्ति करने में और तप की साधना में जहाँ तक ध्यान का संबंध है, ज्ञान का संबंध है, वहाँ तक तो हम मान जाएंगे, इसमें कोई कष्ट नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही है, क्योंकि नवीन नवीन और सत्य बात मालूम हो जाती है। यदि अनशन करे, उपवास करे, विनोदन करे तो इसमें तो बड़ा कष्ट है, इन तपों से तो हमें अलग रहना चाहिए। इनमें लगने की बात तो है आचार्य देव, आपको इसमें तो कष्ट मालूम होता है, उसका समाधान ये समझ में ही ना बात क्या कहना चाहती। जहाँ ज्ञान करना है, ध्यान करना है तो समझ लेते, परंतु ये अनशन वगैरह अपने से नहीं होगी, उसमें तो कष्ट लगता है। उसका समाधान यो है कि अनशन आदि तपों से भी तब कष्ट है जब स्वयं करना न चाहे और करना पड़े। अपनी उत्सुकता से, अपनी प्रसन्नता से जो अनशन आदि तपों को करता है उसे इस तप में भी कष्ट अनुभूत नहीं होता। यदि कोई दुनिया को बताने के लिए या दुनिया मुझे नाम न धरे, दुनिया में भी प्रशंसा बढ़े, क्या कहते दुनिया में नाम न धरे का अर्थ क्या है, सब लोग कर रहे हैं, आपने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, तो अपने को भी करना पड़ेगा ना उपवास, संशय जो कुछ बताने के लिए। या दुनिया में प्रशंसा बढ़े, ऐसे कुछ भी भाव रखकर अनशन करे तो वह दिल से नहीं किया, अनशन के चाव से अनशन नहीं किया, वह तो जबरदस्ती से हुआ। जो आप न करना चाहे और किसी कारण जबरदस्ती हो जाए तो उस अनशन में कष्ट का अनुभव होता है, पर जो स्वयं अपने आप के परिणाम प्रमादी न बन सके और क्लेश रूप भी परिणाम न बने, इस प्रकार ध्यान की सिद्धि के लिए अनशन आदि भी करना चाहिए, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। यानी वो स्वयं में अंगीकार करता है और उसको ध्यान के इसमें लगता है अधिक। और विशुद्ध उपयोग का अनुरोध, समय हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, बराबर, अच्छा किया, याद दिलाया। जावानी के प्यान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो, सदा देत हो।
नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसावनम, नमो अरियंतानम, नमो